बुक नंबर टू और उसमें चैप्टर फाइव जो फिफ्थ चैप्टर है वो आज हम पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर्स जो आप सीखे तो एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी ये आज का हमारा पूरे किताब में थीम दिया है और ये थीम को लेकर के पांच चैप्टर बनाए हैं, राइट। तो फिफ्थ चैप्टर में हम अपने अंदर आध्यात्मिकता का विकास उदय प्रोग्रेस कैसे करें ये यहां बताया है। तो दिमाग से नॉलेज होना कि मैं आत्मा हूं और अवेयरनेस होना चेतना होनी कॉन्शियस हो जाना कि मैं सोल हूं। तो स्पिरिचुअलिटी अर्थात अवेयरनेस कि मैं आत्मा हूं, दूसरी अवेयरनेस सुप्रीम बीइंग की सुप्रीम सोल की, तीसरी अवेयरनेस कि हम आपस में आत्मिक नाते ब्रदर्स हैं, एक फादरहुड और ऑल सोल्स आर ब्रदर्स। ये कॉन्शियस ये दृष्टि ये स्मृति इस समय आप बनाइए, सुन रहे हैं ये क्लास भी कर रहे हैं ये टॉपिक भी कर रहे हैं, साथ साथ अपनी ये कॉन्शियस बना करके लर्न कीजिए इस टॉपिक को। कंप्लीट रिनाउंसिएशन ऑफ वाइसेस विच आर नॉट इननेट टू द सोल। आध्यात्मिकता के इस पाठ ने हमें क्या पढ़ाया कि मुझ आत्मा में वाइसेस जन्म से नहीं थे, अनादिकाल से नहीं थे, ये मेरी इननेट क्वालिटीज नहीं है किंतु एक्वायर्ड क्वालिटीज है। देह में आने के बाद मैंने उन वाइसेस के भान में हम आए हैं, ये अवेयरनेस ये मान्यता ये कॉन्शियस इसे स्पिरिचुअलिटी कहते। बहुत अच्छी बात बताई है, यहां हमें ज्ञान मिल रहा है इस टॉपिक में कि वस्तुओं का आदान प्रदान फिजिकल होता किंतु गुण ज्ञान शक्तियां ये सूक्ष्म होते हैं। वस्तु आपने एक दूसरे को दे दी तो आपसे वो चीज चली जाती है, पर ज्ञान अगर आप दूसरे को देते हो तो आपसे जाता नहीं और उसको भी मिलता। तो संसार में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सात्विक शक्तियां हैं सात्विक सत्व है, तो यहां बताया कि वो सूक्ष्म बातें नॉलेज है जो अभी हमें मिल रहा है, ये नॉलेज कि मैं आत्मा हूं, मेरे पिता परमात्मा भी परमात्मा है, हम आपस में भाई भाई हैं, ये ज्ञान मिला। मैंने ये ज्ञान लिया और हमने आपको पास ऑन किया तो ये ज्ञान बढ़ता है, सूक्ष्म है तो सूक्ष्म चीजें बढ़ती है उनका स्टॉक घटता नहीं, और पांच तत्वों की चीजों का स्टॉक तो आइडियाज कंसेप्ट्स एक्सपीरियंसेस परसेप्शंस वे इस पांच तत्वों की स्पेस से बियॉन्ड है स्पेसलेस है एंड मेटाफिजिकल बाय नेचर, अर्थात ये अध्यात्म बातें हैं। आइडियाज जो सात्विक आइडियाज आते हैं किसी को, एक बालक बाय चांस भूल से वायर को छू लिया, सभी लोग आवाज दे रहे हैं अरे कैसे छुड़ाए, क्योंकि अगर उसको हाथ लगाने जाते हैं तो खुद में भी करंट आ जाता है। ऐसे में एक गृहस्थी माता को आइडिया आया, उसने लकड़ी उठा करके उस बच्चे के हाथ से लकड़ी के माध्यम से वायर को डिस्कनेक्ट किया, फ्री हो गया करंट से इलेक्ट्रिक करंट से। ये आइडिया पर कौन सा आइडिया था? सात्विक आइडिया, राइट? तो जितनी जो आत्मा सात्विक होती है, जितनी जो आत्मा आत्माभिमानी होती है, तो उसे ऐसी कैचिंग, ऐसी टचिंग्स आती है, और ये टचिंग सबका कल्याण करती है। कहते हैं ना, भगवान आपके स्वरूप में आया और मुझे मदद करके गया, राइट? तो ऐसी सनातन शक्तियां जो प्रवर्तमान है, जो सूक्ष्म रूप में होती है, ये उनका मैसेज है कि आध्यात्मिक शक्तियां सूक्ष्म होती है, और वो जितनी यूज करते हो, जितनी प्राप्त करते हो, उतनी बढ़ती है, बढ़ती है और बढ़ती है। अब ये अप्रोच, ये दृष्टिकोण पहले आपको पता था, मिली नई बात? तो आध्यात्मिकता का विकास करना है, उदय करना है मुझे मेरे अंदर, तो मैं ऐसी सूक्ष्म शक्तियों को अनुभव करने के लिए फ्री करूं। एक्सप्लोरिंग द स्पिरिचुअलिटी, तो ये एक्सप्लोरिंग हुआ ना अभी, इस तरह कि ये आइडियाज, परसेप्शंस, एक्सपीरियंसेस में मैं डीप डीप जाऊं। बाय शेयरिंग नॉलेज इट इंक्रीजेस इन कॉन्ट्रास्ट टू फिजिकल थिंग्स, वस्तुओं के आदान प्रदान की भेंट में ये बढ़ता है। बेनिफिट्स क्या है इसके? कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स आप सद्गुणों के एम्बॉडीमेंट बनते हैं, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, डिटैचमेंट, प्योरिटी। बेनिफिट्स स्वयं को भी है, दूसरों को भी है, एनवायरमेंट को, एवं परमात्मा के भी हम मददगार बन जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करने से क्या बन जाते हैं हम? भगवान के भी मददगार। अब जहां हमारे अंदर क्वालिटीज नहीं है, तो क्या आ जाता है हमारे विचारों में? क्या आ जाती है? वीकनेसेस। हमारे शब्दों में, वाणी में और कर्मों में भी कमजोरी आ जाती है। तो स्पिरिचुअल बनना अर्थात क्या है? संसार छोड़ के जाना। स्पिरिचुअलिटी मीन्स दैट। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हुआ, यहां क्या अर्थ मिला हमें? कि हम सद्गुणों के स्वरूप बनते हैं। तो नई नई विजन मिली आपको आज आध्यात्मिकता की। तो स्पिरिचुअल प्रोसेसेस, जो ये हम प्रक्रियाओं में जाते हैं, ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा अभ्यास कर रहे हैं स्व को बनाने का, वो हमारे लिए प्रोटेक्शन हो जाता है। हम अपनी स्व की रक्षा कर सकते हैं इस स्पिरिचुअलिटी के आधार से। तो ऐसे प्रोसेसेस को प्रैक्टिस करना जिससे कि हमारी लाइफ क्या बन जाए? स्पिरिचुअल। तो यहां आपको इस चैप्टर में सारे सिद्धांत, प्रिंसिपल्स बताए हैं। डिफेक्ट्स इन ओरिजिनल थॉट्स स्टेप बताया है कि मेरे अंदर विचारों में विकल्प हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, तो हमें क्या करना है? हमें चेकिंग करनी है, चेंज करना है, और जब भी कर्म कोई करे तो कर्म से पहले सोचना है। एफर्ट्स टू चेंज द सेल्फ करेजियसली, डिटर्मिनेशन के साथ, एटर्नल विजिलेंस के साथ। जैसे एक आर्मी ऑफिसर ड्यूटी पर कितना विजिलेंट रहता है, कितना सतर्क रहता है, ऐसे ही संसार में हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना है, ताकि जो अनस्पिरिचुअल एटमॉस्फियर है उसका कोई अटैक हम पर नहीं हो। तो मुझे ऐसा पुरुषार्थ और ऐसी चेकिंग एंड चेंज करना है, तो मेडिटेशन इसके लिए अनिवार्य है। और मेडिटेशन क्या है? मैनेजमेंट ऑफ थॉट्स, प्रैक्टिस टू टेक कंट्रोल ओवर थॉट्स। विचार तो अनलिमिटेड है, वन बाय वन आते ही रहते हैं, क्योंकि हम फिजिकल अवेयरनेस में हैं, इसलिए भौतिकता के विचार नॉन स्टॉप अपने आप आते हैं। इसके लिए यहां बताया है कि यू हैव टू स्टॉप योर थॉट्स, टेक कंट्रोल ओवर थॉट्स। अब आउट ऑफ 30-40 थॉट्स 90-95% आर वेस्ट, यूजलेस या नेगेटिव है। तो कितने काम के थे विचार? 5%, 10%, राइट? तो उसको कंट्रोल करना, तो ये मैनेजमेंट ही मेडिटेशन है। अब मन पर किन किन बातों का प्रभाव है, इन्फ्लुएंसेस अपॉन द माइंड? 5 senses, 5 elements, 5 vices। तो 24 घंटा हम इन प्रभावों में हैं, तो मन कौन से विचार करता है? कर्म इंद्रियों के अधीन, एनवायरमेंट के अधीन एवं विकारों के अधीन। तो बॉडी कॉन्शियसनेस, एनवायरमेंट, इन दोनों का जो पावर है, बॉडी कॉन्शियसनेस एवं जो वायुमंडल है, इन दोनों का जो पावर है वो क्या कर रहा है आत्मा को? आत्मा की बैटरी को और आत्मा की आंतरिक शक्तियों को, आत्मा की प्रभावशीलता को, इफेक्टिवनेस को डिमिनिश कर रहा है। तो हमें कितना अपने अंदर इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए? मोर एंड मोर एंड मोर। Thoughts are like actions, begin inside the mind, spread the vibrations and influence the surrounding atmosphere. Spiritual thoughts है कि bodily thoughts है? दोनों thoughts का प्रभाव atmosphere में spray होता है। Scent डालते हो तो spray करते हो, उसकी fragrance आती। आपके thoughts की भी fragrance वायुमंडल में प्रसरती है। तो हमें क्या बताया, क्या करूं मेडिटेशन में? मैनेजमेंट ऑफ योर थॉट्स। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? इट इज अ सेल्फ टीचिंग। किस लिए? क्यों अपने आप को सिखाना है? क्योंकि हमें प्रज्ञा वाला, मेघा शक्ति वाला, विजडम वाला, ऐसा बुद्धिमान बनना है, राइट? तो मेरा भला कहां है, मुझ आत्मा का भला कहां है, ऐसा सोचना, यही है प्रज्ञा शक्ति। तो सेल्फ टीचिंग एंड टू बी अ वाइज, तो स्पिरिचुअल नॉलेज गिवर। क्या करना चाहिए हमें जब हम ये क्लास करा रहे हैं, हम ये ज्ञान सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? Should live a spiritual life, soul conscious, God conscious, brotherliness, management of thoughts, मन को उपराम करे 5 senses, 5 vices and 5 elements से। इसको कहते हैं living a spiritual life, pure words, selfless motive in actions, truth, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट विथ फैमिली यूनिट्स। जहां स्पिरिचुअलिटी है वहां आपस में, परिवार में कौन सा संबंध होगा? ट्रुथ, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ऐसा ही वायुमंडल स्कूल्स में हो, ऐसा ही वायुमंडल वर्क प्लेस में भी हो। तो स्पिरिचुअलिटी के साथ वैल्यूज जुड़ी हुई है एंड वैल्यूज के साथ स्पिरिचुअलिटी। तो फर्स्टली यू हैव टू बिगिन विद द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसे होता है स्पिरिचुअलिटी का उदय? कहां से होगा? स्वयं से। सो स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्सपीरियंस एंड सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज। ये अनुभव की बात है एवं जो ज्ञान मिला है उसे स्वयं में धारण करना, स्वरूप बनना। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, रिपीटेशन, रिप्रोड्यूसिंग एज एन एकेडमिक एजुकेशन। बहुत सुंदर बात है ये। उस एजुकेशन में और इस एजुकेशन में क्या अंतर है? वहां फिजिकल ऑर्गन से आप सीख करके उसे रिप्रोड्यूस करते हो एग्जाम में, और यहां आप एमएससी के स्टूडेंट्स क्या करेंगे? एग्जाम लिखेंगे किस आधार से? इस ज्ञान को जो अभी मिल रहा है जीवन में प्रयोग कर, अनुभव लेकर, और अपने नेचुरल अनुभव को आंसर के रूप में एमएससी के पेपर में, एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी के पेपर में लिखेंगे। आत्मा लिखेगी अपना ही अनुभव, आत्मा अपना विकास, आध्यात्मिकता का क्या, कहां, कितना किया है वो उत्तर में लिखेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसको रटा रटाया करके मैंने परीक्षा पास कर ली। अगर ऐसी एमएससी डिग्री ली है तो आपने ली हुई है डिग्री, किंतु आप पास नहीं हो रियल सेंस में, क्योंकि अंदर नहीं गया है ज्ञान। तो यहां पर बताया है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। इट टेक इंफॉर्मेशन, चर्न, मंथन करना, चर्निंग अर्थात मंथन करना, इम्बाइब, उसे धारण करना, इनकल्केट द नॉलेज, उसका अभ्यास, प्रैक्टिस, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रैक्टिसिंग इट हैविंग एक्सपीरियंस, वहां तक उसका अभ्यास प्रैक्टिस करना कि जहां तक कि आपको उस इंफॉर्मेशन का अनुभव प्राप्त न हो जाए तहां तक छोड़ना, जब तक कि उस डेप्थ तक आप न जाओ, गहराई में न जाओ, अनुभव न प्राप्त करो तहां तक उस प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं। आज कहा ना बाबा ने, कर्म में योग, कर्म योगी बनो, कहा ना। तो ये कर्म में मेरे अभी कितनी याद है परमात्मा की, किस तरह मेरा योग युक्त कर्म चल रहा है, इसके अनुभव में जाओ। सिंपल कर्म एंड याद वाला कर्म अंतर है। व्हेन नॉलेज बिकम्स प्रैक्टिस वी गेट एक्सपीरियंस, वी एक्वायर विजडम, एंड हम अपने आप ही दूसरे हमें वाइज, समझदार, बुद्धिमान समझेंगे। इसलिए फॉलो द स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल प्रिंसिपल्स, कौन कौन से भाई, अमृत वेला करो, ट्रैफिक कंट्रोल करो, वेयरिंग द व्हाइट, गॉड्स कंपनी, सेलिबसी, ईटिंग हैबिट्स, राइटिंग चार्ट, प्योर डाइट इन रिमेंबरेंस ऑफ गॉड, व्यूज ऑन सेलिबसी बाय डिफरेंट रिलीजन, प्योर लव, स्पिरिचुअल स्टडी, मेडिटेशन, मनसा सेवा मेथड्स, सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्सेंट्रेशन, सेल्फलेस मोटिव, सर्विस। अब इस बैकग्राउंड से जो अभी आपने स्लाइड्स देख ली, उस बैकग्राउंड से अभी आप स्वयं में क्या महसूस करते हैं कि इस तरह की जीवन शैली, इस तरह की वे ऑफ लिविंग आवश्यक है या नहीं? बहुत आवश्यक है। तो यहां पर एक बात आपको मैं एक चित्र के द्वारा ड्रॉ करके बताना चाहूंगी, उसके बाद ये स्लाइड्स देखेंगे।
मानो हम आत्माओं ने, ये तो डल है, मानो हम आत्माओं ने प्रवेश किया बॉडी में, ठीक है, ये ब्रेन में प्रवेश किया। तो चैप्टर में जो संकेत है, एक मैसेज है कि जो ही आत्मा देह में प्रवेश करती है तो ये ब्रेन है ना, ये मस्तिष्क, इसके इन्फ्लुएंस में आती है आत्मा, राइट, बॉडी के कनेक्शन में आई। आत्मा जो सुन रहे हैं उनसे, जो देखा उस पर आप बोलना शुरू कर रहे हैं, मुख चला। तो आत्मा ब्रेन रूपी ऑर्गन के कांटेक्ट में आने से ब्रेन की शक्ति क्वालिटी के आधार पे आंखों के, कान के, मुख के, स्पर्श, राइट। तो हाथों और पैरों से जिन जिन चीजों को स्पर्श करते हो उसके भी प्रभाव में आए, राइट। तो ये जो कर्म इंद्रियों के सेंस ऑर्गन्स के प्रभाव में आए और पूरा शरीर पांच एलिमेंट्स और पांच एलिमेंट्स फाइव वाइसेस से युक्त है, करेक्ट, ओके। तो फिर क्योंकि जो आगे प्रिंसिपल्स बताए हैं आपको उसका महत्व आप तब समझ पाएंगे जब इसको समझेंगे, ये बीच की लिंक को समझेंगे। तो इन्होंने इसको प्रभावित किया, इन्होंने इसको प्रभावित किया, इन्होंने इन सब सेंस ऑर्गन्स को प्रभावित किया और ये सब मुझ आत्मा को प्रभावित। लिंक मिली? तो इतने सारे फोर्सेस हैं जो आत्मा पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट। और हम आत्माएं अपना मन, बुद्धि और संस्कार इन सब के प्रभावित है। मन कहां है? इन सब में है। बुद्धि कहां है? इन सब में है। संस्कार कहां है? इन सब में। आज बाबा ने कहा निंद्रा जीत, राइट, नींद को जीतने वाले बनो। किसको आ रही है नींद? किसको आ रही है? फाइव एलिमेंट्स को, राइट, शरीर को आ रही है ना। हम आत्मा को नींद चाहिए? हम आत्माएं अलग है, फाइव एलिमेंट से अलग है ना, पांच तत्वों की आत्मा बने हुए हैं। तो अब आप क्लियर समझिए और बताइए कि सोल कॉन्शियस बनना जरूरी है, जो पहला सेंटेंस है इस चैप्टर का, कि स्पिरिचुअलिटी मींस अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, अवेयरनेस ऑफ द गॉड, अवेयरनेस ऑफ द रिलेशन विथ अदर सोल्स, राइट। तो ये जो सारे प्रभाव है हम लोगों के ऊपर, तो उसे न्यूट्रलाइज कैसे करें? एक एक कर्म इंद्रिया पांच विकारों से रंगी हुई है, रंगी हुई है, लतपत है, लतपत। पांच विकार इतने अंदर हमारे में है बैठे हुए, राइट। तो क्या करना चाहिए, रास्ता क्या है? तो हम मालिक, आत्मा मालिक इन कर्म इंद्रियों को ऐसे विकारी प्रभाव से निकालने का पुरुषार्थ जो है वे ही है आपके इस चैप्टर के प्रिंसिपल्स, जो कुछ सीखे कुछ और आप सीखेंगे। क्लियर हो गई बात? अब इस अवेयरनेस से आगे के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आप सुनेंगे, समझेंगे। तो जितना आप अंदर में स्वीकार करोगे इन बातों को, उतना आपको रियलाइजेशन होगा कि क्या करना है। तो अमृत वेला क्यों बताया है? शुद्ध समय, इन पांच तत्व जो मैले हैं, पांच तत्व जो विकारी हैं, किंतु उन पांच तत्वों में जो थोड़ी 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 अच्छाई है वो कब है? सवेरे। तो उसी समय अमृत वेले परमात्मा से शक्तियों को प्राप्त करने का विशेष वरदानी समय, यह परमात्मा से आध्यात्मिक मिलन द्वारा गुण और शक्तियों को अनुभव करने का विशेष समय, इस समय परमात्मा मनुष्य आत्माओं को अनंत शक्तियां और गुण प्रदान करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा बताया, संकल्पों के प्रवाह पर नियंत्रण। संकल्पों के प्रवाह पर नियंत्रण का अभ्यास मनुष्य के संभावित कर्मों की दुर्घटना को नियंत्रित करने का प्रभावी उपाय है। संकल्पों के ट्रैफिक कंट्रोल के अभ्यास से चेतना का स्तर बढ़ता तथा इनको सकारात्मक दिशा में मोड़ने की शक्ति का विकास होता है। परमात्मा को भोजन समर्पण करके स्वीकार करना, क्यों ये प्रिंसिपल है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? अन्न तो शुद्ध हुआ, परंतु मुझ आत्मा पर क्या देह बन करके खाना और विदेही बन करके खिलाना, एक है खाना एक है खिलाना, अंतर है इसमें? तो परमात्मा को भोजन समर्पण करके स्वीकार करने से आसक्ति नहीं रहेगी, है ना? और रथ को जितना खिलाना है उतना उसकी याद से खिलाओगे तो वो डाइजेस्ट भी होगा और कर्म इंद्रियों को शक्ति मिलेगी उस भोजन से। आखिर वह भोजन किस लिए है? ताकि हम बाबा की सेवा में अथक होकर चले, है? तो शक्ति मिलनी चाहिए ना भोजन से। तो वो शक्ति मिलती तब है जब परमात्मा को समर्पण करके उसे खिलाकर उसके साथ उसकी याद में स्वीकारे। तो परमात्मा को भोजन समर्पण करना उनकी दिव्य उपस्थिति में आत्मा और शरीर के सूक्ष्म मिलन हेतु उनको दिया गया भावों भरा आमंत्रण है। तो परमात्मा को समर्पित करने के लिए भोजन को सकारात्मक चिंतन की मानसिक अवस्था में पकाने से भोजन में सात्विक शक्तियों का संचार हो जाता है। फिर दूसरा प्रिंसिपल, श्वेत वस्त्र आपके अंदर क्या परिवर्तन लाएंगे? श्वेत वस्त्र आपकी अपनी जो कर्म इंद्रिया देहाभिमानी है, रंगीन वस्त्रों के आकर्षण में है और अपने को वस्त्र के अनुसार सुंदर समझना, वस्त्र के स्वरूप से स्वयं की पहचान करना, इसके बजाय जब आप श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तो प्यूरिटी, शांति, स्वच्छता और एक स्वमान जागृत होता है। स्वमान किस लिए मैंने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं? तो जितनी हमारे अंदर प्यूरिटी की पसंदगी होगी उतना श्वेत वस्त्र अच्छा लगेगा, अन्यथा लोगों के प्रभाव में उनकी मर्यादा रखने, उनको खराब न लगे इसलिए आप कलरफुल ड्रेस पहनना शुरू कर दोगे। यहां व्हाइट पहनोगे, वहां जाने से कलरफुल पहनोगे, क्यों? उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते हो। उनकी जो आसक्ति है उसके अधीन होकर के आप भी कलरफुल ड्रेस पहनते। अब यहां पर बताया कि श्वेत परिधान धारण करना एक नए परिवर्तन और सेवा के व्रत का प्रतीक है, नए परिवर्तन और सेवा के व्रत का प्रतीक है। बाबा समय प्रति समय सेवाओं में भेजते हैं। एक बार एक स्थान पर हम पुलिस की चौकी होती है जहां पुलिस की ऑफिस, वहां गए थे, देख करके ही बोले आए आप लोग, तो अच्छा किया आप लोग आते हो ना तो हमको अच्छा लगता है, शांति मिलती है, आओ आओ हम अभी आपको मिलाते हैं साहब से। अच्छा आप तो ब्रह्मा कुमारी वाले, कोई दूसरी पुलिस चौकी में, आप तो ब्रह्मा कुमारी वाले हो, हमें बताइए कि स्ट्रेस कैसे हम अपना खत्म करें। यानी सुरक्षा के लिए बैठे हैं पर उन्हें भी सुरक्षा चाहिए, तो वे हमसे कुछ शांति की बातें सीखना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि जो भी आते हैं बातें तो नेगेटिव लेकर आएंगे आपकी पुलिस चौकी में, तो आप क्या करो स्ट्रेस नहीं लेने के लिए, उसे क्या चाहिए बस वो भाव पकड़ लो, क्या क्या चाहिए उसको, कौन सी बात का सहयोग चाहिए, बस इतना ही करो। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा ठीक है ऐसे ही करेंगे। तो संयोग से मुझे वहां जाना हुआ दूसरी बार भी, तो सीनियर सिटीजन हूं अभी मैं, तो वो लोग एक फॉर्म भरवाते सीनियर सिटीजन का, तो मुझे वो पूछता गया डिटेल मेरी, मैं कहते गए वो कंप्यूटर पे टाइप करते, तो फिर मैं कुछ एक्सप्लेन करने लगी, बस मैं समझ गया आपको क्या चाहिए। आपने कल मुझे सिखाया था ना कि सामने वाले का भाव पकड़ लेना, मैंने अपना भाव पकड़ लिया, तो इतना बोलता है बस। अभी दूसरी बात है, क्योंकि लंबी लंबी कहानियां लेकर आते हैं ना लोग, तो किस्से लेकर आते हैं, घटनाओं के किस्से बताते हैं, तो बोला बस मैं उसका एसेंस पकड़ लेता, उसको क्या देना है, क्या चाहिए उसको, बस वही बात मेरे दिल में रहती है। अब मेरे मन बुद्धि स्वच्छ है, टेंशन नहीं। तो बाबा ने एक सेकंड में उसको एक युक्ति दिला दी और वो हल्का हो गया। तो ड्रेस पहनकर लोग पहचानते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी, राइट? पहचान हो गई। एक बहन अचानक मिली रास्ते में, पहचान नहीं थी मेरी कोई उससे। मैं सीडीओ हूं, एजुकेशन ऑफिसर, मेरे पास बहुत सारी म्यूनिसिपल स्कूल्स है, इतनी सारी, बहुत सारी। मैं चाहती हूं कि बच्चों को आप आकर के इमोशनल इम्बैलेंस पर थोड़ा सा क्लास कराएं, हमारे बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं होते फिर सुसाइड कर लेते हैं, तो हम लोगों को कंट्रोल करना कठिन होता है, तो आप लोग आए और कराए। अब मेरी और उसकी क्या पहचान थी, कोई नहीं थी, कभी देखा भी नहीं था। क्यों कहा उसने आपको? श्वेत वस्त्र, राइट? ब्रह्मा कुमारी कहां लिखा हुआ है यहां से यहां तक? कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर श्वेत वस्त्र अपना यूनिफॉर्म देख करके हम ब्रह्मा के संतान है ये उसको पहचान में है ना। तो ये श्वेत वस्त्र क्या क्या करता है, कितनी पहचान है, कितनी इसमें इज्जत है। अपने ड्रेस में मर्यादा है ना, अपने ड्रेस में अलग है, अपना ड्रेस और नेताओं का ड्रेस में अंतर है। तो श्वेत वस्त्र धारण करना आपकी इस मिथ्या रंग रंगीली दुनिया से, क्या क्या मिथ्या रंग रंगीली दुनिया से नए संसार की ओर कदम बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का दृढ़ प्रमाण है। हमारे मधुबन के आप कुमार भाइयों को देखो, उनका चेहरा चमकता है, उनका ड्रेस देखो कितना प्रभावशाली होता है। हमारे सामने यहां शांति वन के सामने एक फैक्ट्री है, मॉडर्न फैक्ट्री, वहां का सबसे बड़ा ऑफिसर, आपके यहां जब भी मैं आता हूं ना, आप सभी के चेहरों पर क्या चमक होती है, वहां जो प्यूरिटी का एटमॉस्फेयर है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे भाइयों की जो सेना है हमारे शांतिवन में, हा? तो क्या रेडिएट कर रही है, यही एक कुमार देख लो संसार का क्या है, इस परिसर से तुम बाहर निकलो, वो कुमार देखो और हमारे ये कुमार देखो, देख लो हमारे संजय भाई को, मनोज देख ले कैसा लग रहा है हमारा संजय भाई, समझ गया हा? तो मुरझाया हुआ चेहरा होगा बाहर का, चेहरे पर वो रौनक नहीं होगी, और एक तपस्वी पवित्र ब्रह्मा कुमार के सफेद वस्त्र परिधान, उसके साथ क्या है, प्यूरिटी की पर्सनालिटी होती है। क्यों पहना है सफेद वस्त्र? तो सफेद वस्त्र विधवा का रंग नहीं है, सधवा का है। सफेद रंग में प्यूरिटी है, शक्ति है, पावर है कि हम क्या करने चले हैं, दृढ़ संकल्प और दृढ़ प्रमाण है। यह इस बात की स्वीकृति है कि आप मन बुद्धि से पुराने संस्कार और संसार का त्याग करते हुए आध्यात्मिक जीवन यात्रा पर गतिमान है। आध्यात्मिक जीवन यात्रा जो अपना थीम है एक्सप्लोरिंग द स्पिरिचुअलिटी, हम क्या कर रहे हैं ये। और ऐसा वस्त्र परिधान कराने वाला पिता साकार में ब्रह्मा बाबा, आप सोचो ऐसा पिता है संसार में कोई मिला? कोई नहीं, एक भी पिता ऐसा नहीं मिलेगा जैसा ब्रह्मा बाबा ने मर्यादा शील बनाया है हर कुमार हर कुमारी को, हर ब्रह्मा कुमार हर ब्रह्मा कुमारी को। वैल्यू समझे सफेद वस्त्र की? तो जिसने दिल से ये स्वीकार किया है, दिल से पहना हुआ है, वो आत्म गौरव से सामने जवाब दे सकेगा समाज को भी। फिर समाज आपको रोकेगा नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करेगा। पर अगर आप डगुमगु है, डर डर के कर रहे हैं, तो फर्क है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ में परमात्म सत्संगी, परमात्म सत्संगति सर्वश्रेष्ठ मित्र मंडली है, क्योंकि परमात्मा वर्तमान और भविष्य को बेहतर ढंग से जानते हैं। वे आपके सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करने हेतु आपको सर्वश्रेष्ठ परामर्श देते हैं। वे आपके साथ स्पष्टता से चल सकता है ऐसी परामर्श बाप है, तो बाप जो परामर्श देंगे वो हम कर सकते हैं ऐसी ही दे रहे हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति का उसे हर क्षण भान रहता। परमात्मा के साथ मित्रता एक युक्ति है जिससे मनुष्य को अपनी सर्व आवश्यकताओं की पूर्ति का अवसर मिलता है। गॉड एज ए फ्रेंड, तो फ्रेंड से हम सर्व प्राप्तियां, तो उनके सत्संग में रहना, उनकी कंपनी में रहना सर्वश्रेष्ठ कंपनी है। और उससे जो समय प्रति समय संकेत मिलते हैं, इशारे मिलते हैं, वो हमारे कल्याण के लिए। दिनचर्या का लेखांकन, दिनचर्या का साक्षी भाव से लेखांकन करना तथा किसी भी स्थिति में सदा मुस्कुराते रहना आपके कर्म की प्रत्यक्ष विजय है। इससे यह प्रकट होता कि आपके कदमों में सदा संपूर्णता की ओर बढ़ने का साहस है। शांतचित भाव से परिवर्तन का स्वागत करने की मानसिक तैयारी है। उमंग को पंख लगाने के लिए खुशियों का असीम संसार है। क्या तीन चीजें मिली यहां आपसे इस स्लाइड से? मुस्कुराना, मानसिक तैयारी शांति से रखना आने वाले सीन के लिए, और उमंग सदा बढ़ाते ही रहना। ठीक है, आहार एवं ब्रह्मचर्य, प्रेम, पवित्र और सशक्त संकल्प भोजन तैयार करने के सशक्त एवं अदृश्य घटक है। केवल भोजन का ज्ञान कि कैसे बनाना है, क्या प्रोपोर्शन लेना है, कैसे डेकोरेशन करना है, ये पाक कला में निपुण होने के लिए पर्याप्त नहीं है। अच्छे से अच्छी पाक कला कौन सी है? जो सकारात्मक चिंतन से भोजन परमात्मा की याद में बनाया होगा, आप देखना आपको एक्यूरेट बनेगी वो चीज, स्वादिष्ट भी होगी और एक्यूरेट बनेगी, परफेक्ट बनेगी। और आप जितनों को खिलाओगे वो संतुष्ट होकर के, वो पवित्र भोजन उन्हें शक्ति दे रहा है। तो ये पाक कला आती है क्या संसार के डेकोरेशन वाले, काजू कतली और रोल और ये वो पता नहीं क्या क्या नाम, उसी काजू को 50 डिजाइन करके आकर्षित करते रहते हैं उनके वो शोकेस में, मिठाई वाले की शोकेस में, वो अच्छी है या ये 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 अच्छी है, है? जिसमें पवित्रता की शक्ति हो, है? आज से कि अब तक शुरू हो गया जब से यहाँ आए? अच्छा अच्छा, देखो यहाँ तो आप बाबा के घर रोज पवित्र भोजन स्वीकार करते हो, भगवान को भोग लगा हुआ। तो बताया है कि कब भी, चाहे भोजन बनाना है, चाहे कपड़ों की सिलाई करनी है, चाहे क्लास कराना हो, चाहे इस क्लासरूम को सेटिंग करना हो, क्या चाहिए उसमें? किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने, क्या चाहिए उसमें? उस कार्य में क्या चाहिए? प्रेम, समझदारी, सावधानी की आवश्यकता होती। तन और मन के बीच बहुत ही संवेदनशील संबंध होता है, तन का मन पर और मन का तन पर, आपस में जुड़े हुए हैं दोनों, दोनों अरस्परस इफेक्ट करते हैं। अन्न का मन पर प्रभाव न केवल हमारी चेतना भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करती, बल्कि भोजन की गुणवत्ता भी हमारे मन को बहुत गहराई तक प्रभावित करती। जैसे मद्यपान या नशीली दवाइयां मनुष्य के मन और उसकी निर्णय शक्ति को प्रभावित करती, उसी प्रकार भोजन का भी हमारे मन पर हल्का या अधिक प्रभाव अवश्य पड़ता है। जो यहां बताइए आपको बात, राइट? तो धरती में बीज बोकर किसान अनाज देता उसकी मनसा, फिर उस अनाज को वो पास ऑन करता मार्केट में उसकी मनसा, फिर रिटेलर के पास वो अनाज आया उसकी मनसा। आपने कहां से धन कमाया है, किस रास्ते से धन कमाया है, आपके धन का वहां अनाज पर वितरण, और फिर आप घर में कैसे बनाते हो उसको, किस भाव से बनाते हो, किस स्थिति से बनाते हो, इतने सारे प्रभावों का एक अनाज रोटी सब्जी दाल चावल जो पकाया आपने, उसमें कितनी आत्माओं का उसमें विचार प्रवेश, वृत्ति प्रवेश हो गई है, उसको शुद्ध कौन करेगा? इतनी सारी मनुष्य आत्माओं की उस अन्न पर जो प्रभाव है उसको शुद्ध कौन करेगा? तो न केवल हमारी चेतना भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करती, बल्कि भोजन की गुणवत्ता भी हमारे मन को बहुत गहराई तक प्रभावित करती है। इसलिए निर्णय शक्ति को भी प्रभावित करती है, उसी प्रकार भोजन का भी हमारे मन पर हल्का या अधिक प्रभाव अवश्य पड़ता है। भोजन ग्रहण करने की आदत, खाने की आदत साधारण, पौष्टिक आहार, रोटी सब्जियां फल गिरीदार फल दानेदार अनाज दुग्ध से निर्मित वस्तुएं वसा और तेल इत्यादि का सेवन करना चाहिए, न तो अधिक मात्रा में न ही अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए, भोजन को धीरे धीरे शांतिपूर्वक चबाकर खाना स्वास्थ्य कारक होता है। ये सारी कर्म इंद्रियों को चलाने की विधियां हैं, कैसे इन कर्म इंद्रियों को हम आत्मा मालिक चलाएं। अब स्पिरिचुअल लाइफ का एक बेसिक प्रिंसिपल ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य या पवित्रता का क्या अर्थ है? क्यों कोई व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करता? यदि ब्रह्मचर्य प्रकृति के विरुद्ध है तो इसकी इतनी महिमा क्यों की जाती है? एक तरफ संसार महिमा करता और एक तरफ जीवन में जो ब्रह्मा कुमारी के सिद्धांतों को अपनाता है, तो ये जब विरोध आ रहा है तो ये शक्ति अपनानी है, ये आत्म गौरव अपनाना है कि हम कोई बुरा कार्य नहीं कर रहे हैं। ये भाव जब हमारे अंदर हम पैदा कर ले तो सामने वाला उसके आगे नतमस्तक हो सकता। इसमें बहुत अच्छी बात बताई है कि जब तक मुझ आत्मा को ये रियलाइजेशन ना हो कि मैं आत्मा इस देह में आकर देह के प्रभाव में क्या कर रहा हूं,
Thank you.
तो ब्रह्मचर्य का पालन क्यों आवश्यक है, नीड क्यों है, ये जो चित्र हमने अभी समझा। तो जैसे वस्त्र मैला है तो धोना है, साफ करना है, ऐसे हम आत्माएं मैली हैं तो हमें प्यूरिफाई होना ही होगा। तो प्यूरिफिकेशन के लिए सेल्फ अवेयरनेस, जो पहला स्टेटमेंट इस चैप्टर का बताया कि सेल्फ अवेयरनेस, गॉड अवेयरनेस, रिलेशन अवेयरनेस एंड अवेयरनेस दैट दिस फाइव एलिमेंट्स एंड फाइव वाइसेस आर इम्प्योर, राइट। तो ब्रह्मचर्य के संबंध में ऐतिहासिक अवधारणाएं, मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब ने ब्रह्मचर्य को खुदा की पहली और मौलिक इच्छा बताई है। तो इन शास्त्रों में, अलग अलग धर्मों के शास्त्रों में भी है सही, पर उसको हाईलाइट इतना नहीं किया गया, अन्य बातों को ज्यादा। तो अपनी किताब में उन शास्त्रों से भी ये अच्छे स्टेटमेंट लिए हैं कि वास्तव में हर धर्म का बीज जो है वो प्यूरिटी है, हर धर्म ने प्यूरिटी को माना है। आज युगों के कालांतर में भले इंप्यूरिटीज बढ़ गई है इन धर्मों में, किंतु बेस में, बेसिक, इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में भी हर धर्म की ब्रांच का पहला पोर्शन क्या बताया है, गोल्डन, रंग दूसरा है ना, और अंत में वो ब्रांच पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गई है, तमो प्रधानता में, इसलिए ब्लैक एंड ग्रे कलर जैसा उसका ब्रांच का अंतिम बात बताई। क्यों? तत्वों के प्रभाव में आते आते देह अभिमान बढ़ता बढ़ता बढ़ता, देह को देह समझना, दूसरे को भी देह से देखना, और इस बीमारी को, इस इंप्यूरिटी को खत्म करने परमात्मा कौन सी प्यूरिटी सिखाते हैं, बेसिक, जहां से इंप्यूरिटी की शुरुआत हुई वो है देह को देह समझना, उसके बजाय आत्मा समझना, स्वयं को और आत्मिक भाव से देखना। यहूदी धर्म में यह मान्यता थी कि कामांध स्त्री और पुरुष दूसरे दिन शाम तक अपवित्र होते। प्राचीन समय में हिंदू धर्म में शारीरिक संसर्ग को मृत्यु के समान माना जाता था, राइट। तो ये ओरिजिनल बातें हैं जो संसार में शास्त्रों में हैं, और आज इसका परिवर्तन कहां पहुंचा है, ग्रस्त में है ना, ये तो अलाउड है, हम तो ग्रस्ती है, एक लाइसेंस लेकर बैठे हैं, ठीक है। तो ग्रस्त को भी ब्रह्मचर्य का पालन करने के नियम हैं, और अब तो बाबा तो हमें, परमात्मा पिता तो हमें वो बातें सिखाते हैं जिससे कि चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, किस भी उम्र के हो, किस भी जाति के हो, किस भी धर्म के हो, ऑल आर सोल्स एंड यू ऑल हैव टू बी प्योरिफाइड। महान बौद्ध उपदेशक धम्मिका सूत्र ने एक बार कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति वैवाहिक जीवन से दूर रहता क्योंकि यह दहकते हुए कोयले के गर्त में गिरने के समान है। तो इंप्यूरिटी कहां ले जाती है मनुष्य को, वो हर धर्म ने अपने अपने रीति से बताया है। ओल्ड टेस्टामेंट में ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करते हुए कहा गया है, एक महिला का सबसे महान उपहार उसका ब्रह्मचर्य है। एक्सॉर्ड्स 19.15 में कहता है कि शारीरिक संसर्ग से मनुष्य का पतन होता है। ब्रह्मचर्य का स्वेच्छापूर्वक पालन करने का मुख्य कारण स्वयं को पहचानकर जीवन के उच्च उद्देश्य को पहचानना है। ब्रह्मचर्य केवल मानसिक स्तर पर एक विचार का पालन नहीं, बल्कि यह एक स्वाभाविक जीवन शैली है। यदि मानसिक स्तर पर किसी का संकल्प काम वासना की ओर नहीं जाता तो यह भी ब्रह्मचर्य का स्वाभाविक रूप से पालन करना है। तो संसार ने भी ये बातें मानी है और परमात्मा पिता पुनः हमें ये बातें सिखा रहे हैं कि मनसा स्तर पर भी आपकी प्योरिटी का पालन हो। तो प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के ये फाउंडेशन बता रहे हैं। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला संकल्प और ज्ञान की उच्च पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता। जो इस लेवल पर आ जाता है वो ज्ञान की उच्च पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है। जब ब्राता अब्दुल कलाम जी आए थे पांडव भवन माउंट आबू में, हमारे दादी प्रकाशमणि जी उनसे मिले, तो दादी जी, जगदीश भाई, अब्दुल कलाम जी, ये लोग उस लेवल के आत्माएं हैं जो इन भौतिक वासनाओं से न्यारे हैं। बेसिकली राइट फ्रॉम बिगिनिंग ये वे आत्माएं हैं इस प्रकार की उच्च कक्षा की। तो दादी जी ने जैसे ही अब्दुल कलाम जी आए, दादी जी ने उनको उस आत्मा को, अब्दुल कलाम की आत्मा को इतना पहचान लिया, तो जैसे आत्मिक लेवल पर दादी उसे मिले, बाबा के कमरे में ले गए। बाबा के कमरे में ले जाकर जैसे भाई भाई से मिलता है, दादी ऐसे उनसे मिले, क्योंकि उसकी प्योरिटी की लेवल को दादी की आत्मा ने पहचाना। और है ही वो यूनिक, आप देख लो, मुस्लिम धर्म में जन्म है, पर कितना आविष्कार किया उसने, भारत देश का कौन सा कल्याण किया है आपको मालूम है? वो एटमिक एनर्जी का सदुपयोग करने की बात पूरे भारत देश में किसने की? अब्दुल कलाम जी। और ये जो प्रोजेक्ट अपना चल रहा है कि मेडिटेशन से हम हार्ट के कैड प्रोग्राम, हार्ट का जो ये प्रॉब्लम है वो दुरुस्त कर सकते हैं, ईश्वर से, परमात्मा से शक्तियां लेकर के हार्ट की धमनियों पे अगर वो प्रकाश पड़ता है, गॉड का रेजेस पड़ते हैं, तो धमनियों का जो ब्लॉकेज है वो खुल जाता है, राइट? इस प्रोजेक्ट में तभी अब्दुल कलाम जी हेड थे गवर्नमेंट में, उस डिपार्टमेंट में, तो कैसे इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी, तो कैसे कैसे ऊंचे ऊंचे काम जिससे कि समाज का, विश्व का कल्याण हो, वो कौन कर सकता है जो इन अपनी कर्म इंद्रियों के वश नहीं है, जो इन कर्म इंद्रियों की लोलुपता से जो बियॉन्ड है? तो ऐसी आत्माएं क्या करती है, सुन लिया, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला संकल्प और ज्ञान की उच्च पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे जीनियस आत्माएं ब्राता जगदीश भाई, दादी जी और अब्दुल कलाम जी, तो इनमें ये गुण आप देख रहे हैं। भले उसके उनके उनके लेवल से थोड़ी कम कक्षा के शायद हो सकते हैं, मैं कह नहीं सकती हूँ राइट वे, पर नरेंद्र मोदी जी है, वे भी ब्रह्मचारी है, तो उसकी आत्मा कहां पर है? पूरे गुजरात का कैसे मैं कल्याण करूं, क्या क्या करूं, कौन से नए आविष्कार करके जन उत्थान कैसे हो, बच्चों का कैसे हो, माताओं का कैसे हो, सभी का क्या क्या, कहां है उसकी बुद्धि? उसकी बुद्धि इस देह में नहीं है, उसकी बुद्धि कहां है? कल्याण, मानव कल्याण के प्रति। तो सीएम तो सब जगह है आज भारत में, आप देख रहे हैं, पर जो ब्रह्मचारी होगा सीएम उसमें, और जो गृहस्थी सीएम होगा उसमें, आप देखोगे उनकी पॉलिसी पॉलिसी डिसीजन में अंतर आप महसूस करोगे।
सही, रोल मॉडल के रूप में रखती
है, हाँ, रोल मॉडल के रूप में रखती है। तो कई बातों की अच्छाइयां आज गुजरात में हैं, तो जरूर एक आत्मा का योगदान होता है। तो आज के विश्व मंच पर कुछ कुछ गिने चुने ऐसे आत्माएं हैं जो इस समय भी पवित्रता का पालन नेचुरल रूप में कर रहे हैं, इन अ वेरी नेचुरल वे। तो उनके अंदर पवित्रता और स्वमान बहुत दृढ़ होता है। जिससे व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के कारण अपनी अपने अंदर अपनी ही प्रतिबद्धता, वचनशीलता के कारण उनमें दिव्य गुणों का स्थायी विकास होता है। क्योंकि बेस फाउंडेशन है प्यूरिटी, जहां प्यूरिटी को जीत लिया तो बाकी दिव्य गुण आने ही आने हैं, इसलिए उनके द्वारा परोपकार होगा ही होगा। कल्याण होना ही है दूसरों का। आज एक एक भाई बहन क्या कहते हैं, दादी जी ने हमें ऐसा किया, दादी जी ने हमें ये दिया, दादी जी से हम मिले तो हमें ये प्राप्ति हुई। क्यों? तो वो दिव्य शक्तियां ऐसी आत्माओं को वरदान के रूप में परमात्मा से स्वतः मिलती है। आप डॉक्टरों में भी देखो, एक बहन एक डॉक्टर के पास गई, इतना उसको बीपी की तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी, उस दिन उसके आंखों में इतने आंसू थे कि कैसे भी करके अब मुझे आप इस बीमारी से छुड़ाओ। उसने सच्ची दिल से उस डॉक्टर को कहा होगा। उस डॉक्टर का परिचय यह है कि वो नियमित ये मथुरा जहां श्री कृष्ण का कहते हैं स्थल है, तो उसका नियमित चाहे आंधी हो तूफान हो बारिश हो, वो पर्टिकुलर समय पे नियमित उसकी श्रद्धा वहां थी, जाता ही था। तो जो सच्ची भावना से ईश्वर को याद करता तो उस डॉक्टर को ये यश मिला हुआ था, यश यू नो सफलता। तो जैसे उस पेशेंट को उसने देखा, उस बहन को, उस दिन उस डॉक्टर द्वारा परमात्मा की वह शक्ति उस बहन को मिली, उस दिन से उसका बीपी कभी हाई नहीं हुआ। तो भगवान अपना कार्य करवाते हैं उन बंदों के द्वारा, उन आत्माओं के द्वारा आज भी जो सच्चे हैं। तो अपने कार्य में चाहे आप डॉक्टरी का करते हो, बिजनेस का करते हो, गृहस्थी का करते हो, पढ़ाने का कार्य करते हो, अगर आप शुद्ध हो तो ईश्वर आपके साथ बंधा हुआ है। ईश्वर आपके द्वारा अनेक आत्माओं को वो प्राप्ति, वो प्रोफेशन है तो प्रोफेशन की प्राप्ति, वो मेडिकल है तो मेडिकल की प्राप्ति, वो आपका बिजनेस है तो बिजनेस की प्राप्ति, जो आप करते हो पर उसमें ईश्वरीय शक्ति शामिल होकर के सबका कल्याण करना ही है। तो उनके अंदर पवित्रता और स्वमान बहुत दृढ़ होता, जिससे व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के कारण उनमें दिव्य गुणों का स्थायी विकास होता है, परमानेंट विकास दिव्य गुणों का। वे परमात्मा के अति निकट होते हैं। पवित्र प्रेम, पवित्र प्रेम ब्रह्मचर्य की कुंजी है। आध्यात्मिक प्रेम से समस्त मानवीय कमजोरियां एवं संकीर्णताएं व्यक्तित्व से आसानी से दूर हो जाती, एक सशक्त चेतना का निर्माण होता जिससे व्यक्ति में श्रेष्ठ गुणों की व्यवहारिक रूप से धारणा होती, सभी प्रकार के प्रेम का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक चेतना का विकास करना है। ऊंचे से ऊंचा प्रेम कौन सा है? आत्मा की ज्योति जगाना, आध्यात्मिक चेतना का विकास करना है, जिससे, क्योंकि जब तक हम आत्मा है ये हम महसूस नहीं करते तब तक निरंतर परमात्म अनुभूति हो नहीं सकती, क्योंकि आत्मा का पिता है परमात्मा, देह का नहीं। तो नियमित रूप से आध्यात्मिक शिक्षाओं का अध्ययन एवं ध्यानाभ्यास करना है, राजयोग ध्यानाभ्यास का नियमित अभ्यास करना है, स्वोन्नति के साथ सर्व की उन्नति और कल्याण के लिए निम्नलिखित तैयारी आवश्यक है, शारीरिक और मानसिक विश्राम, एकाग्रता, आत्म जागृति, निष्काम सेवा। मनसा सेवा, संकल्प को सशक्त बनाने तथा मनसा सेवा की विधियां, संकल्प निस्वार्थ हो, कल्याणकारी भावना से संपन्न हो, दया सहयोग एवं दूसरों में उमंग उत्साह उत्पन्न करने वाले हों, संकल्पों में सर्व आत्माओं के प्रति सद्भावना एवं पवित्रता की भावना होनी चाहिए। अब ऐसी ड्रिल, ऐसी संकल्पों की कतार क्रिएट करना, तो पहले स्व की मनसा सेवा, फिर दूसरों की। एकांत एवं शांत होकर निम्नलिखित अभ्यास कीजिए, एक परमात्मा की गहन अनुभूति, संसार के आकर्षणों से मुक्त होने के लिए मनन चिंतन मन की एकाग्रता एवं एक परमात्मा की याद की अनुभूति। अंतर्मुखी बनने तथा बाह्य आकर्षणों से मुक्त होने के लिए मनन चिंतन, एक शक्तिशाली मानसिक स्थिति का अभ्यास, गहन अनुभूतियों में समाने का अभ्यास, कोई स्वमान को लेकर के उसके गहराई में जाकर के स्वयं को वो स्वीकार करवाना, ये है अभ्यास कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं पवित्रता का इष्ट देव हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ऐसे स्वमान के संकल्पों की अनुभूति के अभ्यास में बैठना, शांति की शक्ति का अनुभव करने निम्न अभ्यास कीजिए। सर्वप्रथम शांति के गहन कुंड में स्थित होने का अभ्यास, फिर शांति के अवतार का अभ्यास, प्रकृति के पांच तत्वों की सेवा करने की विधि, मनुष्य के संकल्प चेतना वृत्ति और वायुमंडल की रचना करती है। मनुष्य की वृत्ति बहुत ही शक्तिशाली होती, इसमें तमो प्रधान को सतो प्रधान तथा नकारात्मकता को समाप्त करने की शक्ति निहित होती। मनुष्य अपनी वृत्तियों के अनुसार अपने वायुमंडल की रचना करता है। आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो क्या फीलिंग आ रही है? पढ़ने की। तो क्या है वहां वायुमंडल में वृत्ति कौन सी है? पढ़ाई की। मंदिर में जाते हो तो कौन सी वृत्ति है अपने आप? इसी तरह से हम दैनिक जीवन में जिस तरह की वृत्ति रखते हैं वैसा हमारे इर्द गिर्द वायुमंडल बनता है। ओम शांति। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा अभी पूरा हुआ। अब इसके क्वेश्चंस है, व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स ऑन सेलिबसी? सेलिबसी को किस नजरिए से हमें एडॉप्ट करना है, क्यों एडॉप्ट करना है, इसका महत्व क्या है, जिसको आपको एक्सप्लेन करना है इसमें, क्योंकि कहां कहां हमारे मन और तन पर इन विकारों का प्रभाव है जिसके कारण वे अभिमान बढ़ा है, इम्प्यूरिटीज बढ़ी है, तो इम्प्यूरिटीज से प्यूरिटीज बढ़ाने की जरूरत आत्मा में है, अन्यथा आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज। फिर इफेक्ट ऑफ डाइट ऑन हेल्थ, कल हमारे गाता जी बता रहे थे सिखिज्म के बारे में, तो बोला कि सिख कम्युनिटी इतने एग्रेसिव होते हैं, बहुत धैर्यता नहीं होती है, तुरंत ही गर्म हो जाते, मिजाज गर्म हो जाता है। तो भोजन का प्रभाव मिजाज पर आता है, जैसा भोजन वैसा उसका व्यवहार, नेचर बनता। तो जितना एक्साइट करने वाला भोजन है, उग्र भोजन स्वीकार करते हैं, जो उग्र कर देता है तो क्या होगा? आप अभी भी देखो, एक सिंपल भोजन है पर उसमें मिर्ची ज्यादा है, तो आपकी कर्मेंद्रिया उस समय कैसी बन जाती है? पूरी हीट हीट और हीट है ना, पूरे बॉडी में हीट आ जाती है ना। और ऐसे में अगर कोई आपको कुछ कहता है तो तुरंत आप क्रोध कर लेते हैं, वो क्योंकि गर्म तो है ना अंदर में, वो खा करके मिर्ची खा करके गर्म तो हुए थे, फिर ऐसे में किसी ने कोई बात की तो आप और गर्म हो गए, तो हीट डबल हो जाती है। तो अन्न का प्रभाव तन पर कहां कैसे, और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो साइंस भी हमें विज्ञान भी सिखा रहा है वो भी हम सब अभी जान चुके हैं, तो इन बातों को आपको विस्तार से बताना है। और फिर केवल नेगेटिव बातें नहीं बतानी, ज्यादा आपको उसमें पॉजिटिव बातें बतानी है कि अगर हम ऐसा शुद्ध भोजन और अगर सकारात्मक विचारों से भोजन बनाकर स्वीकार करते तो उसका तन पर क्या प्रभाव है, ये भी बात हमें हाईलाइट ज्यादा करनी है अपने उत्तरों में। एलाबोरेट द सर्विसेज थ्रू माइंड। तो मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशंस कौन से कहां कहां कितने हद तक किस एरिया तक मुझ आत्मा तक पहुंच रहे हैं, मेरे आसपास पहुंच रहे हैं, मेरे कमरे तक पहुंच रहे हैं, मेरे घर तक पहुंच रहे हैं, मेरे मोहल्ले तक पहुंच रहे हैं, कि मेरी सोसाइटी तक पहुंच रहे हैं, कि मेरे शहर तक पहुंच रहे हैं, कि मेरे देश तक पहुंच रहे हैं और विदेश तक। ठीक है, अभी अभी जापान में वो अर्थक्वेक हुआ था तो हमारी दादियों ने मनसा सेवा की तो वहां की टीचर बहनों ने आकर बताया कि ऐसा डरावना समय था पर हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि हमें कोई मदद कर रहा है, इतनी पावरफुल रेज हमें मिल रहे थे। तो दादियों की जो फ्रीक्वेंसी है मनसा सेवा की वो सारे विश्व में कहीं भी पहुंचती है। तो मेरी फ्रीक्वेंसी मेरे देह तक है, मेरे कमरे तक है, मेरे मोहल्ले तक है, कहां तक है। तो मनसा सेवा में जितना मेरा पावरफुल संकल्प उतने उसके रेज विस्तार में पहुंचेंगे। तो ये स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं टेलीफोन लाइन है, संचार लाइन है ना। तो आत्मा का आत्मा तक ये संदेश जरूर सच्चे दिल का सच्ची भावना का पहुंचता है। जब कोई मुसीबत में ईश्वर को पुकारते हैं तो ईश्वर उनकी पुकार सुनकर के परमधाम से उनको नहीं देता मदद है? तो आप भी ईश्वर के बच्चे हैं तो आप भी किसी को मदद करना चाहते हैं तो आपकी भी मनसा सेवा से आप क्या कर सकते हैं, सुख दे सकते हैं दूसरों को। हाउ टू मॉडिफाई द लाइफ स्टाइल। तो ये जो प्रिंसिपल है ना सारे अन्न के, सेलिबसी के, अमृत वेला के, वो सारे चार्ट रखने के, मनन चिंतन के, ये मैं मॉडिफाई किया, मैंने अपने जीवन में किया और उससे मेरा जीवन का जीने का तरीका बदल गया। व्हाट आर द फोर सब्जेक्ट्स टू बी अंडरटेकन फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्व परिवर्तन के लिए कौन कौन से चार विषय, ये जो मेन हेडिंग्स है ना इसके, अन्न के, मेडिटेशन के, मनसा सेवा के, पवित्रता के, ये चार हेडिंग्स के अंतर्गत आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक, बस बाकी यूनिट असाइनमेंट तो समझ जाएंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मोर और लेस क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट के टॉपिक्स मोर और लेस सिमिलर है। और कोई बात पूछनी है आपको, अपनी लाइफस्टाइल चेंज हो गई सुनते सुनते स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन आ गया। जो लोग इसके विपरीत आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, कुछ लोग हैं संसार में वो नहीं मानते कि ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, न भी दिया तो भी हमें भी तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है।
उप शांति, मैं भी कुछ ऐसा ही कहने जा रहा था जैसा बहन जी ने प्रश्न ही कर दिया, शायद मेरा संकल्प उन तक पहुंच गया। देखिए बहन जी ने, सावित्री बहन ने बहुत अच्छे ढंग से इन वैल्यूज को हाईलाइट किया है, लेकिन हम अपने अध्ययन को, अपनी नॉलेज को केवल पुस्तक तक सीमित ना रखें। बहन जी जब लास्ट में प्रश्न बता रही थी सेलिबेसी के बारे में, या डाइट के बारे में, द इम्पैक्ट ऑफ डाइट ऑन अवर पर्सनैलिटी, तो ये प्रेजेंट लाइफ के ऐसे इश्यूज हैं जो केवल आपके कोर्स के एक चैप्टर में सीमित नहीं हो सकते। डाइट एक ऐसा विषय है जिसको इंटरनेशनली जो है वो सिर्फ डिस्कस ही नहीं किया जा रहा, रिसर्च भी की जा रही है, और उसमें भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात के अलावा भी वेजिटेरियन में भी जो है डाइट, जो फूड प्रोड्यूस किया जाता है किस तरह के फर्टिलाइजर से किया जा रहा है, उस पर और फर्दर रिसर्च हो रही है। तो कहने का भाव ये है कि ये एक लेसन को आप इंस्पिरेशन लें, एक स्टिमुलस है, एक स्टार्ट है, एक इंट्रोडक्शन है, आपको जगाने का एक प्रयास है कि हम आपस में यहां ग्रुप में भी हैं, शाम के समय अपने अपने बिल्डिंग्स में भी होते हैं। मुझे थोड़ा सा कई बार ये लगता है, बुरा नहीं मानेंगे, डाइनिंग हॉल्स में भी, सड़क पर भी, कहीं बैठे हुए भी, मैंने ये नहीं सुना कि कहीं कोई टॉपिक, कोई बर्निंग टॉपिक जो हमने पढ़ा किया उस पर आपस में डिस्कशन चल रही हो। अगर हमारा लाइफस्टाइल वही द सेम ओल्ड रहना है और यहां क्लास में आके हमने कुछ पढ़ लिया, सुन लिया, उस दिन भी मैंने कहा था कि एग्जाम के लिए तैयारी कर ली, क्वेश्चन तैयार हो गए, एग्जाम में नंबर ले लिए, दैट इज नो अचीवमेंट एट ऑल, दैट इज नो अचीवमेंट। आप 95% मार्क्स भी ले लेते हैं और लाइफस्टाइल वैसा का वैसा रहता है तो इट डजंट मैटर, मेक्स नो डिफरेंस, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता। वो कागज का टुकड़ा, बुरा नहीं माने अगर मैं उस डिग्री के लिए शब्द यूज करता हूं, वो कागज का टुकड़ा वेस्ट पेपर बॉक्स में फेंकने से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता अगर उसने हमारे जीवन के ऊपर 1% भी असर नहीं डाला। उसमें चाहे लिखा हो कि आपने 95% लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात पर एक छोटा सा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के टाइम का जो इंग्लिश प्लेराइट था उस पर एक छोटी सी उसकी अपनी पर्सनल लाइफ का याद आ गया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इंग्लिश का बहुत अच्छा लेखक, नाट्यकार माना जाता है आज के समय में भी। काफी समय बाद जो वो बहुत पॉपुलर हो गया तो एक दिन वापस अपने कॉलेज की तरफ गया तो प्रिंसिपल जो भी थे उन्होंने कहा कि चलिए आइए आपको कॉलेज दिखाता हूं। कॉलेज ले गए, शाह ने देखा यही वो क्लासरूम है जिसमें हम भी बैठा करते थे, यही वो फर्नीचर, यही वो कुर्सियां, यही वो बेंच। तो उसने कहा द सेम ओल्ड फर्नीचर एंड क्लासेस। आगे चला, लाइब्रेरी में गया तो लाइब्रेरी में भी जो है देखा उसी तरह से वही सिस्टम, वैसे ही लोग बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं जैसे। सो कहते द सेम ओल्ड लाइब्रेरी एटमोस्फियर। ऐसे घुमाते घुमाते प्रिंसिपल उसको लॉन में ले आया, वहां लोग बैठे थे, लड़का लड़की आपस में बातें कर रहे थे। तो शाह, क्योंकि ही वॉज वेरी विटी, बहुत विटी और ह्यूमरस था, तो उसने कहा द सेम ओल्ड अफेयर्स, जो हमारे वक्त में होते थे अफेयर वही चल रहे हैं आज भी, द सेम ओल्ड अफेयर्स। और वो लड़का लड़की जो बैठे थे उन्होंने कहा नहीं सर नहीं, हम वैसे ही। कहता द सेम ओल्ड एक्सक्यूजेस, बहाने भी वही हैं। तो क्या हम अपनी जिंदगी को द सेम ओल्ड रखना चाहेंगे क्या? नो, डेफिनेटली नो, विद एन कैपिटल। सिर्फ नो नहीं, विद एन कैपिटल, ओ भी कैपिटल, हाँ। लेकिन वो तब होगा जब आप ये नहीं पूछेंगे कि ये भी किताब में दिया हुआ है, ये भी किताब में है, वो भी किताब में। अगर किताब ही पढ़नी है तो आपके पास है ना, फिर यहां किस लिए आए? खाली किताब तक सीमित रहना है, फिर यहां किस लिए आए? इतने किलोमीटर चलकर इतने दिनों के लिए, और यही किताब घर पड़ी थी ना, लाइब्रेरी में भी पड़ी होती है। अगर किताबों से ही कोई इंटेलिजेंट बन जाता तो हमारे लाइब्रेरी और लाइब्रेरियंस तो दुनिया के सबसे बड़े जो है इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशन होते ना। सो इसीलिए प्लीज मैं ये चाहता हूं कि हम एक ऐसा इनिशिएटिव अपने में भी आप में भी डेवलप कर पाए कि हमारे अंदर एक हेल्थी डिस्कशन हो। हेल्थी ये नहीं कि किसी को नीचा दिखाना है, किसी को क्रिटिसाइज करना है, वो नहीं, हेल्थी। मैं आपके विचारों का स्वागत करूं, चाहे वो मेरे विरुद्ध हैं, मेरी विचारधारा के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, आप उसको नहीं मान, लेकिन मैं उसको सुन सकूं, टॉलरेट कर सकूं, एक्सेप्ट कर सकूं। अगर हम अपने अंदर ऐसा इनिशिएटिव पैदा कर सकें तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि उसने मेरे बारे में ये कह दिया, उसने ये कह दिया, टीचर ने ये नहीं पढ़ाया, टीचर ये पॉइंट छोड़ गया, टीचर ने वो बताया जो किताब में नहीं है। नो, प्लीज नो। हम इतने छोटे बच्चे, क्लासरूम 1-2 के बच्चे तो नहीं है ना, कितने ग्रो अप कर गए हम, तो जिंदगी के कितने कितने अनुभव हैं हमें, तो उन अनुभवों को हम अपनी पढ़ाई के अंदर लाएं, उन अनुभवों को, यानी जो हमारा आंसर लिखा जाए, जो असाइनमेंट लिखी जाए, उससे पढ़कर मुझे पता लगे कि लिखने वाले का जीवन का अनुभव कितना है, मुझे वो पता लगे। ये नहीं कि किताब के पेज नंबर 15 पर पैरा नंबर 3 जो है पूरा का पूरा कॉपी कर दिया है, असाइनमेंट पूरी हो गई, वो नहीं।